ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खुदरा मुद्रा स्फीति में कमी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी।
हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं श्री शुभमोय, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे रिटेल इन्फ्लेशन पर, जो 5.02% है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और इसी के बीच में हम आईआईटी के भी आंकड़े लेके जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में, जो अभी 10.3% है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और शुभमोय जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है।
नमस्कार
शुभमोय जी। अगर हम पहले हम रिटेल इन्फ्लेशन को ले, सितंबर के महीने में रिटेल इन्फ्लेशन 5.02% कैसे रहा? ऐसे कौन से मेजर्स सरकार ने लिए हैं ताकि रिटेल इन्फ्लेशन घट जाए और जो फूड इन्फ्लेशन वो भी गिर जाए, क्योंकि वेजिटेबल्स का जो वेटेज है फूड इन्फ्लेशन में और जो सीपीआई में है उसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो काफी हद तक गिर गए हैं, दाम लेस देन 4%।
वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों की और चावल, गेहूं, बाकी सारे यानी कि अनाज और जो सीरियल्स की जो क्रम है, इसकी अचानक जुलाई, अगस्त और जून में भी जो दामों में जो वृद्धि आया था वो कुछ हद तक एक चिंता की बात बन रही थी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों? क्योंकि दामों में वृद्धि होता है, लेकिन दामों में वृद्धि जो है उसका क्रम एक संतुलन में अगर बना रहे तो लोगों को अपने व्यय के हिसाब के बारे में एक ठोस आइडिया मिलता है। और इस बारे में मैं खासकर आरबीआई का रोल का प्रशंसा करूंगा कि आरबीआई ने इस बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था में दामों का क्या सिलसिला रहेगा इस बारे में पिछले कई सालों से जितना बारीकी से एडवाइस दे रहे हैं और जितना खूबी से उनके एडवाइस सही निशाने पर लग रहा है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि दामों में ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, लेकिन नाजायज ऊपर नीचे होना एक लोगों के लिए संकट पैदा करता है। तो इस बार जो हो रहा था वो है कि जून, जुलाई और तक अगस्त में भी कई वजह से फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाद्य पदार्थों के जो दाम है उनमें वृद्धि हो रही थी। और वो वृद्धि की वजह से, जिसका हम बाद में बात करेंगे कि आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है, आरबीआई जिस मुद्रास्फीति को मानते हैं कि सही मुद्रास्फीति का रेट है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ रहा था। इस बारी जैसा आपने टिप्पणी किया कि मुद्रास्फीति का जो दौर है वो उतर के करीब, मतलब अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें 6.7 से उतर के करीब 5.02 में आ गया। ये जो इतना बड़ा ड्रॉप हुआ है ये कमेंटेटर्स को भी आकर्षित किया है कि ये काफी ज्यादा अच्छा संकेत है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अगर हम देखें कि कितना बदलाव आया है, ये करीब 25 से 30% का प्राइस में कमी आया है, प्राइस राइज के रेट में कमी आया है। तो इससे क्या हुआ है कि लोगों को फिर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, जो प्राइस मैनेजमेंट का जो नीति है वो सही है और उनके जो इनकम सिस्टम्स है, उनकी जो एक्सपेंडिचर है, उन सब पे संतुलन बना रहेगा। और इसमें केंद्र सरकार का रोल बहुत ज्यादा होता है। और इस वक्त पे एक छोटा सा पॉइंट केंद्र सरकार के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार ने दो तरह के कदम उठाए हैं। एक कदम है कि प्राइस कंट्रोल, दामों में कुछ हद तक कंट्रोल, और दूसरा प्रोडक्शन जो हो रहा है उस प्रोडक्शन को सही जगह पे अनुपम तरीके से बांटने का जो सिलसिला है उस पर केंद्र सरकार काफी सिद्ध हुए हैं। और इस दोनों के वजह से प्राइसेस में अभी जो आपके पास जो डेटा जो आप उभर के आए हैं उसमें एक इम्प्रेसिव छवि दिख रही है हमको।
तो आपने सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की बात की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का जो टारगेट है वो 4% है, पहले 6% था। तो अभी आपको क्या लगता है आरबीआई कैसा फैसला लेगा अपने इंटरेस्ट रेट पर, रेपो रेट पर?
आरबीआई का कहना है कि मुद्रास्फीति का दर 4% से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए सालाना, और ये भारत सरकार के साथ उनका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्ट के तहत ये रेट को तय किया गया है। यानी कि 4% मुद्रास्फीति है तो वो स्वीकार है, उससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए, उससे कम नहीं जाना चाहिए। हालांकि 2% का बैंड वो मान के चलते हैं, लेकिन अभी कुछ समय से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने स्पष्ट किया है कि उनके लिए 4% तक लाना ही उनका लक्ष्य है। ये नहीं कि 4% की इर्द गिर्द घूमता रहे, यानी कि 5.5% या 5%, यानी कि टॉलरेंस बैंड के अंदर रहे तो भी चल जाएगा। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि 4% पे ही वो बरकरार रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो बैंड है, ये जो मुद्रास्फीति का रेट है, इसकी स्टेडी रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का उत्साह बना रहता है, लोगों को मॉनिटरी पॉलिसी के सिस्टम्स के ऊपर सबके ऊपर भरोसा रहता है, तो इसलिए उनके ये पोजीशन काफी दुरुस्त है। अब हम अगर देखें कि ये 4% रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि भाई ज्यादा पैसा, मुद्रास्फीति तब होता है कि ज्यादा पैसा जब कम चीजों को के ऊपर हावी हो जाए उनके बिकवा रहा, तो तब मुद्रास्फीति का एक दौर आता है। इसलिए रिजर्व बैंक का भी जो रुख है वो ये है कि बाजार में ज्यादा पैसा ना आए, यानी कि लोग अगर ज्यादा पैसा चाहे क्रेडिट के लिए कहीं और से तो उसके लिए वो ज्यादा दाम चुकाए, तो मेकिंग जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मनी को वो बढ़ा दिए हैं। और ये रुख आरबीआई का भी चलेगा, क्योंकि जैसे गवर्नर साहब का मानना है जब तक 4% तक नहीं पहुंचते वो इस रुख को बरकरार रखेंगे, तो अगर वो ऐसा बरकरार रखेंगे तो निश्चित ही वो रेट कट यानी कि मुद्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्याज दर में वो अभी कट करने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन हाँ और ज्यादा ऊंचाई नहीं उठाएंगे, लेकिन वो इस रेट पे बने रहेंगे जब तक 6.5 रेपो रेट है जो बेसिक इंटरेस्ट रेट ब्याज दर देश में माना जाता है, उस रेट पे बरकरार रहेंगे जब तक दाम 4% तक साधारण चीजों की सामग्रियों के दाम इन्फ्लेशन रेट इसका हम चर्चा करें वो 4% पे नहीं आता है।
दोबारा हम अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो जो आंकड़े आते हैं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से CFPI, इस बार इन्फ्लेशन रेट है 6.56% सितंबर के लिए, और अगर हम अगस्त से तुलना करें तो अगस्त का रहा है 9.94% और सितंबर पिछले साल का अगर हम देखें तो 8.6% था। तो सप्लाई चेन में आपने कहा कि काफी परिवर्तन आया है, बट ये क्या कंटिन्यू रहेगा आगे के समय तक, क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा?
इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दो तरह का एक जिसे कहते हैं दोहरी रास्ते पे चलते हैं और वो पैरेलल नहीं है। उसमें से एक है फूड इन्फ्लेशन जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जैसे अनाज गेहूं चावल हो सीरियल्स हो उनके दाम ज्यादातर खासकर सब्जियों के सीजनल होते हैं, तो उनके दाम और जैसे सरकार ने कंट्रोल किए हैं उसके वजह से उन पर अंकुश आया है। चावल और गेहूं पर दोनों पे ही सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दिए हैं और रोक इसलिए लगाए हैं ताकि देश के अंदर इनकी सप्लाई बरकरार रहे जिसका आप जिक्र कर रहे थे सप्लाई कंट्रोल के तहत। तीसरा चीज है कि मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स यानी कि कोर सेक्टर के जो आइटम्स है यानी कोर में नहीं कहूंगा मतलब मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की जो इन्फ्लेशन है उसका जिक्र मैं कर रहा था, उसका जिक्र कि उनके दामों में किस तरह की वृद्धि या उस किस तरह का बदलाव आ रहा है। और अभी हम अगर देखें तो प्रोडक्शन के बढ़ते इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपने कहा है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत प्रशंसनीय वृद्धि हुआ है, तो ये दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना कि दाम बढ़ाने का सिलसिला। तो दोनों मिलाकर इन्फ्लेशन में कोर इन्फ्लेशन जैसे कहते हैं उसका और जो फूड इन्फ्लेशन इन दोनों में एक सहूलियत बना हुआ है अभी फिलहाल स्टेबिलिटी के लिए। एक ऑफकोर्स चिंता का कारण है जो पहले से ही था, वो था रूस यूक्रेन वॉर, फिर उसके पहले पैंडेमिक के चलते सप्लाई शॉक्स जो सप्लाई सिस्टम्स को काफी झमेले में फंसा दिया था, और अभी जो पश्चिमी एशिया में फिर से जो लड़ाई का जो फिर से जो माहौल बना है वो भी एक चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन उन पर समझदारी से संभालने के लिए सबसे पहले चाहिए कि देश के अंदर मौजूदा हालत स्थिर हो, और मौजूदा हालत अभी ये जो नंबर्स है वो बताते हैं कि मौजूदा हालत अभी कंट्रोल में है। सरकार के लिए अभी जो स्टेप्स अगर लगे कुछ किसी सेक्टर में करने के लिए तो उन पर वो कदम उठा सकते हैं।
और कौन से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर सरकार अपना रही है, जैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर से उन्होंने जो है या इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का कंट्रोल कर रखा है, और ये जो मॉनसून के कैसे आंकड़े आए हैं ताकि क्योंकि अभी खारिफ क्रॉप्स का सोइंग सीजन है, तो आगे के समय में आपको कैसे लगता है कि जो एक्ट ऑफ गॉड के जो फैक्टर्स हैं और जो भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो मिला के आपको क्या लगता है कि फूड इन्फ्लेशन क्या काबू में आ जाएगा ताकि 4% जो टारगेट रहा है आरबीआई का वो हम अचीव कर सकें?
इस पर हमें एक चीज जो है मानसून के इस साल जरूर कमी रही है, लेकिन वो कमी आया है अगस्त में, मानसून में फिर से रिकवरी हुई सितंबर में। और अगर आप रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो एक काफी अच्छा संकेत है कि लोगों को खेतों में काम मिल रहा है या नहीं उसका डेटा अगर देखें तो उसमें आप देखेंगे कि काफी गिरावट आई है अनएम्प्लॉयमेंट के, यानी कि अगस्त महीने में जब हम कह रहे थे कि लोगों को मुश्किलें आएंगी बारिश के कम होने की वजह से और फिर सितंबर में बारिश का रिवाइवल, दोनों उस वक्त चल रहा है जब रूरल इकोनॉमी तेजी पकड़ा है, यानी कि जितना खराब असर हो सकता था वो असर नहीं हुआ है और उसके कई वजह है, उसके बारे में हम कभी जा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये है कि रूरल इकोनॉमी में डेटा बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम हुआ है। और ये देश के लिए एक अच्छा संकेत है।
अगर हम रूरल ग्रोथ की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले दो महीने में काफी चेंजेस आने वाली हैं, परिवर्तन आने वाला है। आप आईआईपी के आंकड़े के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 10.3% अगस्त का जो परफॉर्मेंस रहा है, फैक्ट्री आउटपुट जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का जो 9.3% बढ़ोतरी हुई है और उसका वेटेज 78% है आईआईपी पे, तो आपको क्या लगता है कि जो आईआईपी के जो आंकड़े आए हैं, आपको लगता है कि जो रूरल ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मिला के काफी इकोनॉमिक के को मैट्रिक्स के और सुधरने वाले हमारे?
बिल्कुल, खासकर अगर आप देखें, जैसे आपने जिक्र ही किया है कि मैन्युफैक्चर पूरे आईआईपी में सिर्फ ये माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं, हालांकि उसमें भी बहुत उल्लेखनीय सुधार हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में जो तेजी आया है, और ये मैन्युफैक्चरिंग में जो तेजी है वो जस्ट आज का डेटा से समझना मुश्किल है, उसके लिए हमें थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा। अगर हम पीछे देखें एक साल पहले का, तो उस वक्त हम देखेंगे कि बैंकों की क्रेडिट उधार जो बैंक्स दे रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उसमें कंसिस्टेंटली बढ़ोतरी हुई है। तो बैंक्स ज्यादा पैसा ऋण दे रहे हैं इंडस्ट्री को, और ये ऋण जो है वो ऋण किस लिए काम में आ रहे हैं कि उनके वर्किंग कैपिटल, उनके एक्सपेंशन दोनों में काम, और वही जो प्रोडक्शन में एक्सपेंशन में जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही थी, उसी का ही फल अभी अब देखने को मिल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स, जिसका एक पूर्वानुमान स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के डेटा से कुछ दिनों पहले और भी आया था, उससे साफ से दिखता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि हुआ है। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि अगेन दो चीज दिखाता है, एक है कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट है वो उस पर अंकुश लगेगा, दूसरा इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उन चीजों की भरपाई होने से जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जब आप बाहर से चीज लाके देश के डिमांड को भरपाई करते हैं, उसकी जरूरत कम रहेगी। तो कुल मिलाकर ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। और आप जैसे कहा था कि रूरल इकोनॉमी में क्या संकेत मिलेगा, रूरल इकोनॉमी में मोटा मोटी जो चीजें खरीदी जाती है बहुत सारे बार में, वो उनकी वैल्यू कम रहते हैं, वैल्यू मतलब जो इसका वो खपत करते हैं, चूंकि वहां पे इनकम ग्रुप्स कम होंगे। अब शहरों में भी बहुत सारी जगह पे, वैसे सिर्फ रूरल में ही नहीं कहूंगा, शहरों में भी वो चीज होता है लो इनकम ग्रुप्स में, तो दोनों मिलाकर उनकी जो डिमांड है वो काफी प्राइस सेंसिटिव है, और उनकी प्राइसेस अगर ना बढ़े तो उनका डिमांड बरकरार रहता है, और ये अगेन हमारे आबादी को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा साइन ऑफ कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट के लिए। जी अर्जुन,
शुभमोय, जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है पीएमआई, अगर वो 50 से ज्यादा ऊपर हो तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, तो बिजनेस इन्फ्लेशन का क्या कहना है आपके बारे में? बिजनेस इन्फ्लेशन भी जो है, अगर क्योंकि वो जो कॉस्ट जो कस्टमर तक ट्रांसफर कर देता है, तो आपको लगता है कि इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में क्या दामों में कटौती आएगी?
दामों में कटौती की बात शायद इस वक्त ना आए इस वक्त, लेकिन दामों में वृद्धि, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की दामों में वृद्धि, उसका मैं बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं देखता हूँ। दो वजह है, एक तो जब इंडस्ट्रियल रिकवरी जो हुआ है और साथ में लोगों की परचेजेस में जो रिकवरी हुआ है वो अभी अभी धीरे धीरे स्पीड पकड़ना शुरू हुआ है। इस वक्त में कोई इंडस्ट्री झट से अपना दाम बढ़ाने का ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के हालत में उनका आउट ऑफ मार्केट हो जाने का, मार्केट शेयर कम होने का काफी संभावना है। दूसरी बात यह है कि जो आइटम्स हैं, ज्यादातर आइटम्स, ये इनकी जो रॉ मटेरियल की जो स्रोत है वो फिलहाल संभाले हुए हैं। सप्लाई चेन में काफी हद तक जो डिस्टर्बेंस हुए थे ग्लोबल, उनमें एक तरह का स्थिति आया है। अब जैसे देखेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल चिप्स में पिछले साल जो एक बड़ा क्राइसिस सिचुएशन बन गया था, अभी इंडस्ट्री के लीडर्स के बहुतों का कहना है कि नहीं, वो सालों को वो काफी हद तक पार कर चुके हैं। ठीक उसी तरह से इंडस्ट्रियल टेक्निकल टेक्सटाइल्स या इंडस्ट्रियल जो बाकी रॉ मटेरियल्स हैं, उन सबों की जो आयात की जो रेट है वो स्टेबल बना हुआ है, और ये नहीं कि इससे ये दिखाते हैं कि जो हमारे जो शिपिंग डेटा है वो भी वही दिखा रहे हैं कि अभी चीजों के आने में, और जैसे आगे चलकर भी चीजों के आने की जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत मुश्किलें अभी फिलहाल किसी को लग नहीं रहा है।
तो शुभमय, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे खुदरा मुद्रास्फीति में कमी पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।